Shanti.
रात्रि क्लास है 4:11:68 का। बच्चों की बुद्धि में तो अभी ये है कि अब वापस जाना है। वापस जाने की बात कोई जानते नहीं है सिवाय तुम बच्चों के, क्योंकि षष्ठ की आयु बहुत लंबी दिखाई दी है, इसलिए कोई को पता नहीं पड़ता है, सिर्फ तुम बच्चों को ही बाप आकर समझाते हैं, बच्चे अब अपने पवित्र धाम वापस जाना है तो पवित्र बनो। सिर पर जो पापों का बोझ है, जिस कारण से तुम तमो प्रधान बने हो, तो अभी आज से ही पावन बनेंगे। बच्चे समझते हैं, बरोबर हम सतो प्रधान थे, अभी तो हम तमो प्रधान हैं। दुनिया पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। सतो प्रधान को स्वर्ग कहा जाता है। स्वस्थिति में होते हैं तो स्वर्ग होता है, और पर प्रकृति और पर विकार या रावण के वशीभूत होते हैं तो तमो प्रधान। दुनिया पहले सतो प्रधान थी, ये भी हुनर है। तमो प्रधान को स्वर्ग बनाने का, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने का हुनर एक बाप के पास ही है। बाप जब आते हैं तो तुम सीख जाते हो। अगर सीखा हुआ हुनर सिखावेंगे नहीं तो तुम कोई काम के नहीं। बाप पतित पावन है, महिमा करते हैं, तो जरूर कब पतितों को पावन बनाया होगा। तुम बच्चे जानते हो बाप जादूगर है, रत्नागर है, जादू करके इन ज्ञान रत्नों से नई दुनिया स्थापन करती है। तो निश्चित है पुरानी दुनिया का विनाश जरूर करेंगे। कहते भी हैं तुम्हारी गत मते तुम ही जानो। बाप जो विश्व की सदगति करते हैं, नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया खलास करेंगे। कि नई दुनिया को स्थापन करने और पुरानी दुनिया को खलास करने का हुनर एक बाप के पास ही है। नई बहिष्ट से स्थापन करना और पुराने नरक को विनाश करना, ये बाप का काम है। ये भी जानते हो बहिष्ट और दोजख दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। अभी तुम अनुभवी हो। ये बात सभी को समझाते रहते हो, नहीं तो लोग तो कह देते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है। तुम जो समझाने देते हो इसमें फिर माया की लड़ाई होती है, माया के तूफान आते हैं, कोई तो इन तूफानों को जीत लेते हैं, कोई फिर हार जाते हैं, कोई विकार में गिरते हैं तो रूठ पड़ते हैं, नाराज हो गया, फिर सेंटर में भी नहीं आते। तो बाप समझाते हैं इनकी तकदीर इतनी ही बाला होनी थी, कहेंगे इनकी तकदीर इतनी बाला नहीं है, कोई बहुत है जो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार लेते हैं, कोई थोड़ा मारते हैं, कोई जास्ती मारते हैं। कोई जीते जी यहां मरते हैं फिर जाकर के वो जन्म लेते हैं, वो या यहां से मर जाते हैं। इन बातों का अनुभव भी तुमको होता है, अभी तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती हैं, बरोबर जीते जी बाप के मरते हैं, फिर रावण के बन जाते हैं। इन बातों को तुम समझ सकते हो कि कैसे कैसे होता है, क्या आते हैं फिर कोई के संग में आ गए तो कोई गिर पड़ते हैं, कोई तो गिरते गिरते सावधान भी हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं कलप पहले में से स्थापना होती रहती है, एक तो बाप को याद करो तो तुम्हारे विनक विकर्ण विनाश हो जाए, जो कुछ भी पास्ट होता रहता है समझो ड्रामा, फिर कल बाद ऐसे ही होगा। जो निकला हुआ दूध है वो बाप स्थल में नहीं जा सकता, तो बाप भी धैर्य देते हैं, जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए खबरदार हो जाओ, बीती सो बीती। बेचारे खबरदार होते भी हैं कि हमसे कोई विकर्म न हो। तो बाप समझाते हैं अपना रजिस्टर रखना अच्छा है, इससे तुमको मालूम पड़ेगा कितना कितना हम दैवी गुण धारण किए हैं। डायरी तुम्हारे पास इसीलिए होती है, कोई भी बात होती हो नोट कर देना है, ये डायरी तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है, ताकि तुम अपने चलन को नोट करो, कहीं हमने टाइम वेस्ट तो नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। दुनिया में मनुष्य कमाई के लिए कितनी मेहनत करते हैं, परंतु वो तो एक जन्म की कमाई है, और यहां तो तुम जन्म जन्मांतर की कमाई करते हो, ये सबसे ऊंच कमाई होती है, और ये संगम युग पर ही होती है। ये कमाई कोई स्थूल धन की नहीं है, तुम कमाई करते हो याद की यात्रा की, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश हो जाते हैं। और भविष्य 21 जन्मों के लिए भी तुम कमाई करते हो। तुम ही पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान हो। तमो प्रधान को ही पतित कहते हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाओ, पाप आत्मा कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ही पुण्य करती है, आत्मा ही पाप करती है। पाप करते हैं तो पाप आत्मा, पुण्य करते हैं तो पुण्य आत्मा। तो आत्मा को ही फिर सतो प्रधान बनना है। देह तो विनाशी है, तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, और यही बात माया भुलाई देती है। बाप से वर्षा लेना है तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। ये दैवी गुण तब धारण होते हैं जब तुम सतो प्रधान बनते हो। और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। फिर ये डिफिकल्टी भी है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मनमत पर चलते हैं या मनुष्य मत पर चलते हैं तो डिफिकल्टी भी बहुत है, और सहज भी बहुत है। तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान है। तुमको ये एकदम विश्व की बादशाही मिल जाती है तो एकदम भरपूर हो जाना चाहिए। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु इसमें टाइम लग जाता है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी करना है, कोई से भीख नहीं मांगनी है। ये ड्रामा बना हुआ है। कल पहले जैसे जैसे पढ़ाई पढ़े थे वैसे ही पढ़ते रहते हैं। जो देरी से आने वाले हैं वो देरी से आते रहते हैं, परंतु वो देरी से आने वाले भी कोई ऐसे तीखे हो जाते हैं जो पुरानों वालों से भी गैलप कर लेते हैं। तो हरेक के पुरुषार्थ पर मदार है। स्कूल में भी कोई फेल हो जाते हैं, कोई फुल पास हो जाते हैं। ये बाप तो बहुत लवली है, इसलिए लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। कहते हैं ना, ओ गॉडफादर, परंतु विचारों को सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि से निकलता नहीं है। सर्वव्यापी से फिर लगाव कैसे होगा, लव कैसे पैदा होगा? भारत से ही ये सर्वव्यापी की बीमारी निकली है। फिर और देशों में भी फैल जाती है। ये बहुत कड़ी बीमारी है। ये देह अभिमानी की पहले नंबर की बीमारी है। पांच विकारियों की ही बीमारियां होती हैं। अभी तुम तो समझते हो हम पुरानी दुनिया के पुराने राज्य में हैं। अभी हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी जानते हो ये रावण की राजधानी है। 4/11/68 की वाणी का दूसरा पेज, अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया के लिए। ये बात पक्की कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत है ये भूल करते हैं कि बाप आया तो हम इस जन्म में इतने दुखी क्यों हैं? अरे बाप पढ़ाई पढ़ाने के लिए, आत्मा की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया है। देह का कनेक्शन इस जन्म से है, आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। आत्मा को इस जन्म में अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। तो रास्ता बताते हैं, हिसाब किताब चुकतू करने के लिए बाप को याद करो, इसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, पाप कर्मों का विनाश भी करते हो और नई दुनिया के लिए कमाई भी करते हो। ये तो पुरानी दुनिया है, इसे कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत और सतयुग की आदि होनी है। इस बात को कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। बल कोई कहते भी हैं, अखबारों में दीवारों में पोस्टर भी लगाते हैं, जैसे जय गुरुदेव, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, परंतु उनसे पूछो कैसे आने वाला है, कैसे सतयुग आने वाला है, कैसे कलयुग जाने वाला है, कब जाने वाला है, तो कुछ नहीं बतावेंगे। आगे चल करके देखते रहेंगे क्या क्या होता है। तुम बच्चे तो कहेंगे ड्रामा, समय नजदीक आते जाएगा तो फिर समझ जाएंगे कि ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। कोई को माया की गुप्त ऐसी चमाट लगती है कि वायरे हो जाते हैं। तुमको तो माया के प्रकोप में भी अडोल रहना चाहिए, पागल। तो इस बात में मेहनत है, एटमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ी फिर बहुत आपदाएं आनी है। अभी तक भी मून पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वहां मून पर कुछ रखा थोड़े ही है। वेद की भाषा में मून किसे कहा? चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा का पार्ट चंद्रमा का है। बाप ने तो मुरली में बताई दिया, ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से कुछ भी मिलेगा नहीं, व्यक्त पुरुषार्थ से जा रहा है। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, तुम तो बाप को याद करते हो, तुम हो ही दूर देश के रहने वाले, यहां पराये देश में आए हो, तुम बाप को जानने से सभी कुछ जान जाते हो। फिर कोई भी कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकेगा, पाना था सो पा लिया। जब तक बाप को नहीं जानते हैं तब तक प्रश्न पूछते रहते हैं। फिर भी 84 के चक्र को याद जरूर करना है। जानते हो बाबा आया हुआ है घर ले जाने के लिए, बाप आए हैं बहिष्ठ के लायक बनाने, تو بحث میں جانے سے پہلے لائق ضرور بننا ہے. نئی دنیا اور نئی دنیا میں رہنے والے تیار ہو رہے ہیں. کسی کو بھی نشٹھا میں جوڑ دے کر نہیں بٹھانا ہے. یہ ہٹھ یوگ ہو جاتا ہے. ہٹھ یوگ کرنے والوں کا ماتھا ہی خراب ہو جاتا ہے. کوئی تو دھیان میں چلے جاتے ہیں. وہ دھیان میں جانے والے تو کوئی کام کے نہیں اور ہی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. ان دھیان میں جانے والوں میں نہ جان ہے نہ یاد ہے. تو زور زبردستی کوئی کو بٹھانا نہیں ہے. باپ تو کہتے ہیں کھاؤ پیو کچھ بھی کرو باپ کو یاد کرتے رہو. خاص کیوں بٹھاوے ہیں؟ تمہارا تو کرم یوگ ہے نا. کرم کرتے رہو یاد کرتے رہو. ماں بچے کو یاد کرتی ہے کوئی کام دھام چھوڑ دیتی ہے کیا؟ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آرٹیفیشل یاد ہو جاتی ہے. بل کوئی کہتے ہیں پروگرام آیا ہے یاد کا. ابھی بابا کہتے ہیں جو ہوا سو ڈراما. سماچار پیچھے آتا ہے تو کہیں گے ڈراما میں جو تھا سو ہوا. باپ کو ہٹ یوگ سے یاد نہیں کرنا ہے. باپ کو تو بہت پیار سے یاد کرنا ہے. آتما جانتی ہے وہ ہمارا باپ ہے جس سے ہم کو بے حد کا ورثہ ملتا ہے. اچھا بچوں کو گڈ نائٹ. اگلا راتری کا کلاس ہے 5:11:68. پوچھا پھولوں کو ٹھنڈی پڑتی ہے؟ پھول اور کانٹا کہا جاتا ہے. پھول سکھدائی کو کہا جاتا ہے. کتنی خوشبوئیں دیتے ہیں. ہلکے بھی ہوتے ہیں. دیکھنے میں بھی شوبھنیک ہوتے ہیں. اور کانٹے تو ہوتے ہی ہیں دکھدائی چبھنے والے. اس کا کنٹراسٹ بھی ابھی تم سمجھ سکتے ہو. یہ کنٹراسٹ ستیگ میں تم نہیں کسی کو سمجھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کوئی کانٹے ہوتے ہی نہیں. سب پھول ہی پھول ہوتے ہیں. دیوتائیں تو ہوتے ہی ہیں دینے والے. کیا دینے والے؟ سکھ دینے والے. ابھی بچے فیل کرتے ہیں. تریسٹھ جنموں میں ہم کانٹا تھے. یا جو کچھ کہو سو تھے. بندر تھے جانور تھے. ابھی باپ ہم کو پھول بنا رہے ہیں. تو ابھی تم فیل کرتے ہو ہماری کیا لائف تھی اور ابھی ہم کیا بن رہے ہیں. جان گئے ہو راون کے راج میں کیسے جیون برباد ہوتی ہے. کیا کنٹراسٹ ہوا راون کے راج اور رام راج کا؟ बर्बादी का कारण क्या हुआ? रावण को 10 सिर दिखाते हैं, राम को 1 सिर दिखाते हैं, इससे बर्बादी का क्या कनेक्शन है? रावण अनेक मुख से अनेक प्रकार की मतें देता है और राम एक मुख से एक ही मत देता है, उसे सन्मुख कहा जाता है। सन्मुख कहो तो तुम विपरीत बुद्धि नहीं बनते हो। अपने राज्य में कैसे जीवन आबाद होनी है वो तुम जान गए हो। शिव बाबा जीवन को आबाद करते हैं और माया रावण बर्बाद करता है, तो ये आबादी और बर्बादी का खेल है। तुमको अभी फीलिंग आती है जबकि तुमको बाप समझाते हैं। पहले हम क्या थे, फिर बाबा आकर के हमको क्या बनाते हैं। अभी हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये बात सदैव याद रहनी चाहिए और याद रहे तो खुशी भी रहे। यहां तुम सुनते हो तो खुशी का पारा बहुत चढ़ता है क्योंकि तुम यहां बहुत रिफ्रेश होते हो। इसका कारण क्या है? वो ही मुरली घर में पढ़ते हो सुनते हो तो इतने रिफ्रेश नहीं होते और यहां रिफ्रेश हो जाते हो। इसका कारण है सन्मुख। फूल को पानी मिलता है तो रिफ्रेश हो जाता है। तुमको भी भगवान पानी देते हैं तो समझते हो हम क्या से क्या बनते हैं। फिर तुम धंधे दौरी में जाते हो, बाहर की दुनिया में रहते हो तो विस्मृति हो जाती है। उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। कोई तो बाहर की दुनिया में जाकर के भी बहुत अटेंशन देते हैं क्योंकि जो बच्चे सर्विस पर हैं वो तो बाहर की दुनिया में भी चमकते रहते हैं। ऐसे बच्चों को सर्विस के बगैर आराम नहीं मिलता है। तो जैसे बाप रहमदिल है बच्चे भी रहमदिल बन रहे हैं। अभी दिन प्रतिदिन समय थोड़ा होता जाता है, वो भी कहेंगे ड्रामा के प्लान अनुसार, और इस ड्रामा के राज को तुम बच्चे ही समझते हो। जो तुम्हारे संग के रंग में आते हैं उनको रंग लगता है, तो तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। दुनिया के मनुष्य तो इस बात को नहीं जानते हैं। भारत में कितना आता दुख है, कितनी जनसंख्या है और तुम कितने थोड़े हो। तुम्हारी गुप्त सेना है जो योग बल से अपना राज भाग ले रही है। तुम्हारे में भी फिर बाद में वृद्धि हो जाती है, अभी तो छोटा झाड़ है। छोटे झाड़ होता है तो उसको तूफान बहुत लगते रहते हैं, पर जब नई दुनिया बनेगी तो तूफान की बात ही नहीं रहेगी। यहां तो झाड़ को तूफान लगते हैं, कई पत्ते तो छन जाते हैं, कई फिर नए नए ऐड होते जाते हैं। बहुत प्रजा बनती जाती है। ये फूलों का झाड़ तो स्थापन होना ही है, जैसे वट का जंगल होता है ना, परंतु इस पुराने जंगल को भी आग लगनी है। गाया हुआ है बंभोर को आग लगी, अनेक प्रकार की आपदाएं होनी है। अभी तो कोई को स्वप्न में भी नहीं आता है कि कैसे मौत आना है। तुम तो जानते हो कि मौत आया कि आया, आज और कल की बात है। तुम बच्चे जानते हो भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, तो फिर बच्चों को खुशी भी होनी चाहिए। कृष्ण को पिता अथवा टीचर अथवा गुरु नहीं कहेंगे, क्यों क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कृष्ण को तो बच्चे के रूप में पूजा होती है, बच्चा टीचर कैसे होगा, बच्चा बाप कैसे कहा जाएगा? इनको तो तुम बाप टीचर गुरु कहते हो। ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु है। कृष्ण को तो बाप भी था, टीचर भी था, गुरु भी था। गीता में भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, बाकी सभी रचना है। और रचना से रचना को वर्षा नहीं मिल सकता। कृष्ण बच्चा है तो जरूर कोई बाप दूसरा होगा, बाप को रचयिता कहा जाता है। बाप ने गीता माता को क्रिएट किया है, तो बाप से माता द्वारा वर्षा मिलना है। बाप समझाते हैं वो मनुष्यों की बनाई हुई गीता झूठी गीता है, क्योंकि उसमें बच्चे कृष्ण का नाम डाल दिया है। जो हमारा बाप टीचर सदगुरु नहीं है, वो झूठी गीता पढ़ते पढ़ते तुम गिरते आए हो। फिर वो ही गीता जब तुम मेरे द्वारा सुनते हो तो तुम ऊपर चढ़ जाते। आदि में भी वो ही संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाते थे, परंतु आदि में ये पूरा ज्ञान नहीं था। अभी तो सारा ज्ञान क्लियर हो गया है। वो संस्कृत की गीता, उसकी सैकड़ों टीकाएं हुई हैं, सैकड़ों व्याख्याकार हुए हैं, उन्हीं श्लोकों की अपने अपने तरीके से व्याख्या कर दी है। तो भगवान बाप जो व्याख्या करते हैं वो व्याख्या झूठी हो जाएगी क्या? गीता नंबर वन शास्त्र है, इससे तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। 5:11:68 की वाणी का तीसरा पेज, म्यूजियम आदि खोलने में कितना खर्च किया जाता है, ये सिर्फ समझाने के लिए किया जाता है, नहीं तो इन चित्रों आदि की भी कोई दरकार नहीं रहती है। बाबा आया हुआ है, स्वर की बात चाहिए तो जरूर देंगे, और वहां स्वर्ग में पवित्र भी बनना होगा। आगे चल करके देखना, कि निश्चय हुआ कि बाबा आया हुआ है तो झट भागेंगे। कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको भी ख्यालात उठती है, ऐसे ऐसे घर बनावेंगे, ये करेंगे। वैसे ही ये भी बेहद का बाप है। बेहद का बाप आया हुआ है तो हम उनसे जरूर वर्षा पावेंगे, ऐसे ऐसे अपने महल बनावेंगे। परंतु माया उस खुशी में बच्चों को रहने नहीं देती, क्योंकि राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय की लड़ाई है। बाप कहते हैं इस काम पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। जगत जीत इन लक्ष्मी नारायण को कहेंगे, इनके अलावा और कोई भी जगत जीत नहीं बना है। तो यहां बैठते हो तो सुखधाम और शांतिधाम याद आना चाहिए, बाकी बीती बातों को भूल जाओ। आगे की बातों का स्मरण करते हो तो खुशी होती है। ढाई हजार वर्ष सभी कोशिश करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु उन कोशिश करने वालों को कोई को भी मुक्ति धाम जाने का रास्ता नहीं मिला। अभी बाप ने घर और राजधानी का पता बताई दिया, इतना बताया है और क्या बतावेंगे। अब ये दुखधाम खत्म हो जाएगा। तुम्हारी जब निरंतर याद होगी, याद में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, तो तुमको निरंतर खुशी हो जाएगी। कहेंगे सुखधाम वासी हो तो समझो जितनी याद करेंगे उतनी खुशी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। और एक छोटा सा रात्रि क्लास है 7/11/68। अभी हम स्टूडेंट हैं और ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये ब्रह्मा सुनावे तो भी अनुभव की बात है, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं बाप दादा के। ये पढ़ाई पढ़ रहे और हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं। जानते हैं कि ये पुरानी दुनिया तो बदलनी ही है, और ये बात भी तुम बच्चे जानते हो। न ये ब्रह्मा जानता है न इसके फॉलोअर्स जानते हैं कि कैसे ये दुनिया बदलनी है, और न बाहर की दुनिया के लोग जानते हैं, सिर्फ तुम ही जानते हो। कोई को मालूम ही नहीं है कि दुनिया कैसे बदलती है। तुम तो नई दुनिया के लिए राजयोग सीखते हो बाप से, तो जानते हो कि हम स्टूडेंट किसके हैं, बाप दादा के। वो ही हमारा बाप है, वो ही हमारा टीचर है, वो ही गुरु है। ये बात दिल में याद रहनी चाहिए। ब्रह्मा को बाप, टीचर या गुरु नहीं कहेंगे, गुरु सदगति करने वाले को कहा जाता है। हमको तो भगवान पढ़ा रही है। ये ब्रह्मा को या अपन को भगवान नहीं कहते हैं। भगवान भगवती तो होते ही सतयुग में है। ये बात घड़ी घड़ी याद रहनी चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वो हमारा बाप है, सत्य को माना ही नहीं दुनिया, उस नई दुनिया में हम जरूर जावेंगे, उस नई दुनिया को अमर लोग कहते हैं। फिर उस शिवालय को याद करते रहो, शिव बाबा से वर्षा मिलता है, क्योंकि हम रहने वाले ही शिवालय के हैं, ये शिवालय ही हमारे बाप का वर्षा है। वो भक्ति मार्ग में होता है जड़ शिवालय, वहां तो जड़ मूर्तियां रखी हुई हैं, हम तो जाते हैं चैतन्य शिवालय में। बाप कहते हैं पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि शिवालय क्या होता है और वैश्यालय क्या होता है, अभी बाप को जानने से तुम सभी कुछ जान जाते हो। तुम जानते हो बाप आए हुए हैं हमारे सभी प्रकार के दुखों को हरण करने के लिए, तो दुनिया में गायन भी होता है दुखहरता सुखकर्ता। यहां बच्चे आते हैं तो बच्चों को जैसे नई जिंदगी मिल जाती है, अर्थात नई दुनिया के लिए नई जिंदगी, नई जिंदगी बनाते हैं नए ज्ञान से, तो अपने दिल को सदैव खुश रखना है। कोई तो धंधे में लगे रहते हैं तो फिर वो खुशी नहीं रहती है, बच्चे जानते हैं। मधुबन में तो जरूर अपना परिवार भी होगा, यहां तुम बच्चों को स्मृति अच्छी रह सकती है, यहां वायुमंडल बड़ा अच्छा रहता है, कोई प्रकार का दुनियावी धंधे धोरी का किचड़ा नहीं, चारों ओर चित्र भी लगे पड़े हैं, कृष्ण को देखोगे तो भी स्वर्ग याद आवेगा, घड़ी घड़ी याद आने से कल्याण ही है। बाहर में लिख दो बेहद के बाप परमात्मा शिव से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, सो आकर के समझो, बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए। रोज बाप हमको आकर के याद प्यार देते हैं, रोज रोज याद प्यार सुनने से खुशी का पारा ही चढ़ जाना चाहिए, आधा भोजन खुशी में हो जाना चाहिए, बाकी आधा खाना चाहिए, खुशी जैसी खुराक नहीं। सदैव स्मरण करना चाहिए कि हमको कौन याद प्यार देते हैं। अभी 5000 वर्ष के बाद हमको भगवान का पत्र मिलेगा, कोई के ख्याल में भी नहीं होगा कि भगवान बच्चों को कैसे रोज रोज पत्र लिखते हैं। जितना याद करेंगे तुम सतो प्रधान बनते जावे, गम से फारग होना है, बेगमपुर का बादशाह बनना है, तुम्हारी ये सभी दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजा न खानी पड़े, जो मोचरा खाने वाले होंगे उनको फिर सजाओं का साक्षात्कार होगा, और फिर प्रैक्टिकल में सजाएं खाएंगे भी, सजाएं करते जाएं, साक्षात्कार करते जाएंगे और सजा भोगते जाएंगे, पाप कर्मों का साक्षात्कार होगा ना, इसको कहा जाता है कयामत का समय, सब हिसाब किताब चुकतू होने का समय है, कोई का भी पाप छाप का हिसाब किताब नहीं रहेगा, ये तो समझते हो, गफलत करने से बहुत पछताना पड़ेगा। स्टूडेंट गफलत करते हैं तो फिर नापास हो जाते हैं, तो तुम्हारा तो एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, پڑھائی میں نمبر وار تو ہوتے ہی ہیں، کوئی مہارتھی ہوتے ہیں، کوئی گھوڑے سوار ہوتے ہیں، کوئی پیادے بھی ہیں، پرجا میں تینوں ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس پرجا، سیکنڈ کلاس پرجا، تھرڈ کلاس پرجا بھی ہوتی ہے، تو دیکھو فرق ہوتا جاتا ہے، وہاں تو کرما کرم ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آتم کی استھتی میں استھت رہ کر کے کرم کرتے ہیں، یہاں تو دیوان میں رہ کر کے کرم کیے جاتے ہیں، تو کرم بکرم بن جاتے ہیں، اس لیے باپ کتنا سمجھاتے ہیں آتم کی استھتی میں رہو، دوسروں کا بھی جتنا کلیان کریں گے اتنا تم کو بھی ایوجا ملے گا، ہر ایک کے اپنے اپنے گھر میں چتر رکھے ہوئے ہوں، باہر میں بورڈ لگا پڑا ہو، ایک ترمورتی اور ایک گولے کا چتر ہی کافی ہے، تو بچوں کو کوئی کو سمجھانا بھی سیکھنا چاہیے، اگر دوسروں کو سمجھاویں گے نہیں تو کیا پد پاویں گے، ٹھٹھیرا نہیں بننا ہے، ان ٹھٹھیروں کے کان ٹھک ٹھک سنتے سنتے وائرے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سنتے ہوئے بھی سنتے ہی نہیں ہیں، تم کو بھی دنیا کی ٹھکا ٹھک کی باتیں نہیں سننی ہیں، نہیں تو ٹھٹھیرے مثل کان ہو جائیں گے، باپ ابھی جو باتیں کہتے ہیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے، اچھا میٹھے میٹھے روحانی بچوں کو روحانی باپ دادا کا یاد پیار، گڈ نائٹ اور نمسکار۔